ஓம் சாந்தி. अभी अभी हम आदरणीय गीता बहन जी से सुन रहे थे कि हम सबका लक्ष्य योगी जीवन बनाने का है. हम अभी एक स्टेप आगे बढ़ेंगे. हाँ, योगी जीवन भी क्यों बनाना चाहते हैं और योगी जीवन की हाइट क्या. हठ योगी भी योगी है और दुनिया में अपने कार्य के साथ एकाग्रता से जुड़ने वाले भी योगी है. योगी है, कर्म योगी है. बाबा ने हम बच्चों को अपने साथ संबंध जोड़ करके उन सबसे हाईएस्ट योग राजयोग सिखाया है, जिसमें विधि ये बताई कि देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो. ये फुल विधि है. अभी हम लोग कभी कभी योग माना बाबा को याद करना इतना समझ लेते हैं, लेकिन वो विधि अधूरी है. पूरी विधि क्या सिखाती है? देह सहित देह के सब संबंधों को भुलाना, ये फर्स्ट स्टेप है राजयोग का. सेकंड स्टेप है ये सब बातों को भूल करके खुद को आत्मा निश्चय करना. और थर्ड स्टेप है आत्मा समझकर बाप को याद करना. अब जब आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाती है, देह भान का आवरण खत्म हो जाता है या देह भान का लगाव, मैं मिस्टर सो एंड सो, मैं मिसेस सो एंड सो, मैं माना फलाना, मैं माना फलाना, ये मैं पंजाब व्यक्ति का भूलता है और मैं माना इस वर्ल्ड स्टेज पर हीरो पार्ट बजाने वाली छोटी सी बिंदु. जब मैं अपने आप को अपने उस बिंदु रूप में एकाग्र कर लेती हूं, तो आउट ऑफ बॉडी माना शरीर भी यहां है, आत्मा भी यहां है, फिर भी बुद्धियोग बल से हम शरीर से बाहर ट्रैवल करके, जैसे बाबा हमेशा बताता है, बहुत सारे सेवा के कार्य कर सकते हैं. जिसको दूसरे शब्दों में कहा, देह से रिश्ता टूटा, देह भान टूटा, वो फरिश्ता स्थिति. अब फरिश्ता बनने के लिए शरीर छोड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन फरिश्ता स्थिति की अनुभूति के लिए सबसे पहले मुझे अपने देह भाव को आत्म भाव में ट्रांसफर करना है. और ये मेहनत है. हम लोग योग में बैठ जाते हैं, कई बार देखने को मिलता है आराम से योग में बैठे हैं, हमें शांति की फीलिंग तो आती है, हाँ, लेकिन वो ड्राउजी शांति है, अर्ध निंद्रा वाली शांति है. जैसे हम नींद में सो जाते हैं तो क्या होता है? नींद कब आती है? जब सब सोचना बंद हो जाता है, संकल्प विकल्प बंद हो जाते हैं, बुद्धि शांत हो जाती है, तब नींद आती है ना. तब तक मानो कोई क्वेश्चन मन में बार बार आ रहा है और हम डिस्टर्ब है, संकल्प चल रहे हैं, नींद आती है? नहीं आती है. जब मन और बुद्धि दोनों शांत हो जाते हैं तब नींद आती है। उसी तरह योग में भी, हम योग में बैठे धीरे धीरे वायुमंडल भी ऐसा ही है और अभी मेरे मन में कोई खास बात नहीं चल रही है, इसीलिए हमारा थॉट प्रोसेस स्लो हो जाते है। पर उस समय अगर हमने उसको ट्रांसफर नहीं किया तो योग में भी वही अर्ध निंद्रा वाली अवस्था का हम अनुभव करते हैं। हमें लगता है हम योग में बैठे हैं, बाबा 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 बुद्धि कर रही है, लेकिन वो नींद की अर्ध जागृत अवस्था है। जबकि जागृत रूप की आत्म अभिमानी स्थिति के द्वारा बहुत सारे कार्य कारोबार आत्मा कर सकती है, जिसको कहा फरिश्ता स्थिति। देह और देहभान, देह की सृष्टि की टोटल आकर्षण से थोड़ा समय के लिए बुद्धि उपराम है। अभी जब हम लक्ष्य की बात करते हैं तो बाप समान बनने की बात कर रहे हैं। अव्यक्त ब्रह्मा बाबा ने संपन्नता को प्राप्त किया, अर्थात क्या बना? कंप्लीट फरिश्ता बना। देह का भान टोटल टूटा, देह भी छूटा और देह का भाव भी छूटा। फरिश्ता स्थिति में अभी बाबा अपना कार्य करा रहे। बाबा कहता तुम बच्चों को भी आफ्टर ऑल ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना है। डायरेक्ट कोई भी ब्राह्मण देवता नहीं बनता है, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो हम ब्राह्मणों को भी संपन्न बनने की अवस्था अर्थात फरिश्ते स्थिति तक जरूर पहुंचना है। ये हम सबकी आखिरी मंजिल है। 100% फरिश्ता वाली स्थिति माना हमारे सारे बोझ सब कुछ खत्म होकर के डबल लाइफ स्थिति। अब हम इन एक एक बातों को थोड़ा डिटेल में डिफाइन भी करेंगे और चेक भी कर लेते हैं। फरिश्ता स्वरूप स्थिति ये आज के हिसाब से कॉल ऑफ टाइम है, क्योंकि समय बहुत फास्ट बदल रहा है और तीव्र गति से बदलने वाले समय के साथ अब ब्राह्मण जीवन का सुख, ब्राह्मण जीवन की प्राप्तियां, इसकी लहरों में हम सब बहुत लहराए हैं। हाँ, ब्राह्मण जीवन की प्राप्तियां क्या है? अतिंद्रिय सुख और परमात्मा के साथ का कदम कदम पर हम अनुभव कर रहे हैं और परमात्मा पालना में पल रहे हैं। आदि मध्य अंत जो बात सारे कल्प में कभी भी किसको मालूम नहीं थी, वो सारी नॉलेज की बात आज बाबा ने हमको एकदम स्पष्ट कर दी है। तो अगर लिस्ट निकाले तो संगम युग की प्राप्तियां बहुत है, बहुत कुछ मिला है हमें। अभी देखो बाप दादा भी धीरे धीरे अपने कार्य को समेट रहे हैं, ऐसा महसूस होता है कि नहीं होता है ना? देखो पहले बाप दादा के टर्न जिस तरह चलते थे, अभी बीच बीच में बाबा एक टर्न को दो टर्न को मिस कर देते हैं, तबीयत के हिसाब से रथ की, या जो बाकायदे प्रॉपर मुरली चलती है वो बहुत कम टर्न में चलती है। अदरवाइज तो वह बच्चे और बाबा बच्चों की महिमा करता है और बच्चे बाबा की वाह वाह, इस तरह से बाबा की मुरली एप्रिसिएशन में पूरी हो जाती है। तो भगवान अपने काम को समेट रहा है। ये सब सिचुएशन हमें क्या सिखा रही है कि अब अंतिम समय के लिए हम सबको स्वयं को तैयार करना है। अभी अलबेलेपन से हम ज्ञान मार्ग में चलते रहेंगे, चल तो रहे हैं, क्लास कर तो रहे हैं, चलो 7 दिन में से 5 दिन तो मुरली क्लास किया, 2 दिन मिस भी कर दिया, तो व्हाट्सएप पर मुरली सुन लेंगे, नेट से मुरली पढ़ लेंगे, ये अलबेलेपन में हम अपने आप को चला लेते हैं। समय की पुकार है कि अब हम पुरुषार्थ में चुस्त बने और स्वयं की फरिश्ता स्वरूप या फरिश्ता स्थिति के लिए स्वयं को फोकस करें। ये कॉल ऑफ टाइम है, समय की पुकार है। दूसरा, भक्तों का आवाहन है। भक्त भी अभी थक चुके हैं भक्ति करके, वो आह्वान करे, भगवान अभी तेरी एक बूंद के प्यासे हम। आज सुबह शिलू दीदी सुना रही थी ना मुरली में, धक्के से अंदर जाते धक्के से बाहर, एक झलक भी मिल जाए तो भी असौभाग्य। तो अभी भक्त भी आवाहन कर रहे हैं कि हे पूज्य, हे पूर्वज, हमें आकर के, हे हमारे इष्ट, हमें आकर के अब हमें साक्षात्कार करा दो। क्योंकि भक्त बिना साक्षात्कार के मानने वाले नहीं, और जिस भक्त को जिसके द्वारा साक्षात्कार होगा, क्योंकि वो ज्ञानी बनने वाले भगत नहीं है, लास्ट की अंजलि लेकर जाने वाले हैं, तो जिसने जिसके द्वारा साक्षात्कार किया होगा द्वापर से, वो उसी का भगत बनने वाला है। तो भक्तों की भी पुकार है कि अब हम हमारी ओरिजिनल स्टेज को प्राप्त करें, पहुंचे और अनेकों को अनुभव और साक्षात्कार कराएं। तीसरी बात, दुखी आत्माओं की आशा। दुखी आत्माएं फरिश्तों को याद करते हैं, फरी ये भगवान कोई फरिश्ते को भेज दो और हमें मदद दे दो। एंजल्स को बुलाते हैं ना, आओ। एंजल्स को क्यों बुलाते हैं? समझते हैं एंजल्स अच्छी आत्माएं हैं जो आकर के हमें मदद देगी। ये एंजल्स कौन है? जो दुखी और तड़पती हुई आत्माएं हैं, उनको सकाश और शक्ति द्वारा वो क्षणिक भी सुख की अनुभूति कराने वाले, शांति की अनुभूति कराने वाले फरिश्ते कौन? तो हमें वो अवस्था को प्राप्त करना जरूरी है, तब तो हम वो दे सकेंगे। फिर स्नेही सहयोगियों की हमें भावना है कि ये चलते फिरते फरिश्ते, जो हम लोग नहीं कर सकते वो ये करते हैं, स्नेही सहयोगी ऊंची नजर से देखते हैं। और हम ब्राह्मणों का तो ओरिजिनल संस्कार ही है, कौन सा? स्नेही सहयोगी। हम फरिश्ता स्थिति, ये तो हमारी ओरिजिनल स्थिति है। हम परमधाम से आए तो क्या लेकर आए? देह भी नीचे आकर लिया ना। तो मुझ आत्मा की ओरिजिनल स्टेज क्या है? कंप्लीट स्टेज अर्थात फरिश्ता स्थिति। अब वो स्थिति का मुझे आवाहन करना है और वो स्थिति की अनुभूति को मुझे बढ़ाना है। क्या और कैसे? थोड़ी सी हम बाबा की मुरलियों के आधार पर इस बात को देखेंगे। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। अब बाबा ने जो डिफाइन किया है, तो ये फैन चालू करेंगे। फरिश्ता बनना अर्थात बाप समान संपूर्ण बनना। फरिश्ता माना स्वयं को देह से न्यारा, लाइट के कार्ब में अनुभव करना। आत्मा का जो नेचर बताती, वो क्या बताती? ज्योति स्वरूप। लाइट, प्रकाश, तो स्वयं को उसी प्रकाश के कार्ब में फील करना, लाइट। अब इसमें दो प्रकार की लाइटनेस आ गई, एक लाइट माना प्रकाश, लाइट के कार्ब में हूं मैं, और इसीलिए देवताओं के आसपास आप देखो लाइट का कार्ब दिखाते हैं ना, फुल कार्ब। और दूसरा है देह भाव, देह भान, इन सब प्रकार के बोझ से हल्का। तीन बातें दिखाइए यहाँ, एक अपना देह भान और देह भाव, इससे लाइट, क्योंकि ये नीचे खींचता है, अपना देह और दूसरों की देह ये मुझे नीचे खींच देती है, नीचे खींचती अर्थात, नीचे खींचती अर्थात देह भान में लाती है, अर्थात क्या होता है, पांच विकारों में से कोई ना कोई विकार स्थूल या सूक्ष्म। जैसे अभी भले काम विकार खत्म हो गया, लेकिन फिर भी अगर किसी को देख करके मुझे आकर्षण हो जाता है, क्या पर्सनालिटी है, क्या हैंडसमनेस है, क्या ब्यूटी है, तो देह भान में आने से ये धरती माना पांच तत्व ने मुझे आकर्षित कर दिया, खींच लिया मुझे नीचे, तो मैं अपने भी देह भान में और दूसरों को भी देह भाव से देख रही, ना मैं अपने देह भाव में हूं, मैं भी अपनी ओरिजिनल आत्मा भाव में हूं। अब आत्मा भाव की निशानी क्या होगी, जब मैं आत्मा भाव में हूं तो दूसरों को भी आत्मा भाव में देखूंगी। अब आत्मा की निशानी क्या है, आत्मा भाव की, कोई भी आत्मा अपने आप में इनकम्प्लीट है ही नहीं, जब मैं आत्मा भाव में देख रही हूं तो उसके ओरिजिनल स्वरूप में देख रही हूं, सात गुणों से संपन्न। आत्मा के पास वीकनेस नहीं है, वो देह के अंदर है तब वीकनेस है। मैं बिंदु आत्मा बिंदु को देख रही हूं तो वो परमधाम निवासी आत्मा को देख रही हूं और फील कर रही हूं, तो मुझे किसी की वीकनेस से असंतुष्टता नहीं आएगी, मैं एक्सेप्ट करके चलूंगी कि ये वीकनेस अभी इस आत्मा का इस जन्म का पार्ट है, ओरिजिनलिटी नहीं है, ये आदमी है ही ऐसा ऐसा नहीं है, ये आत्मा का इस जन्म के इस पार्ट की ये वीकनेस है, इसीलिए वो मुझे ज्यादा असर या लंबा समय उसका असर नहीं रहेगा। दूसरा, देह के संबंध लौकिक और अलौकिक, ये भी मुझे खींचते हैं। चलो हमने मोह को छोड़ा, लेकिन लगाव के रूप में, ममत्व के रूप में, कभी कभी हम लौकिक को भी तोड़ देते हैं तो अलौकिक में जुट जाते हैं, सोने की लोहे की जंजीर को तोड़ के सोने की जंजीर में बंध जाते हैं। कोई बहन को देखा, बस बिल्कुल मेरी छोटी बहन के जैसी है, वो मेरी खास बहन बन गई। अब खास बहन बन गई माना उसके लिए मेरा समय संकल्प सब कुछ खास चलेगा। वो लौकिक बहन के साथ का तो संबंध तोड़ा, लेकिन यहाँ अलौकिक बहन में फंस गई। तो लौकिक और अलौकिक दोनों संबंध में न्यारे भी और प्यारे भी, कार्य में है तब तक प्यारे, कार्य पूरा हुआ काम भी, बुद्धि का काम भी पूरा हुआ, मैं और मेरा बाबा, ये है न्यारा और प्यारा। फिर तीसरा, अपने और दूसरों के स्वभाव और संस्कार के जो टक्कर हैं, ये भी मुझे देहभान में ले आते हैं और ये बोझ बन जाते हैं। अगर मेरी किसी के साथ पटती नहीं है, बनती नहीं है, तो वो व्यक्ति सामने आते ही हम भारी हो जाते हैं। फरिश्ता किसी से भारी नहीं होता है, क्योंकि उसका लॉन्ग टाइम किसी के लिए साथ कोई संबंध है ही नहीं, पार्ट बजाने का संबंध है। मानो आप लौकिक में भी रह रहे हैं, बच्चे के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ संबंध क्या है हमारा? बाबा ने मुझ आत्मा को उन सब आत्माओं को संभालने के लिए निमित्त बनाया है। मेरी ये तो प्रॉब्लम है, ये भी बाबा के हैं, तो हम हल्के रहेंगे। ट्रांसफर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो मेरापन अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा और फिर मेरे पुराने स्वभाव और संस्कार ये भी बोझ बन जाते हैं। अगर मेरे से परिवर्तन नहीं होता है तो ये मेरे अपने ही स्वभाव और संस्कार मेरे लिए क्या बन जाते हैं? बोझ बन जाते हैं और मुझ आत्मा को भारी करते हैं। तो ये चारों चीजों को मुझे अपने जीवन से रिप्लेस करना है, ट्रांसफर करना है, तो फरिश्ता स्थिति नेचुरल बन जाएगी। अब ये नेचुरल कब होगी? इसके लिए बाबा ने दो बातें कही हैं, दो अनुभूतियां हमें इस ब्राह्मण जीवन में बढ़ानी है। एक है मुक्ति और दूसरी है मुक्ति। किन बातों में? मुक्ति किसका नाम है? मुक्ति को डिफाइन क्या करेंगे हम? मुक्ति को कैसे डिफाइन करेंगे? बाबा ने दो चीज दी है या दे रहे हैं बाबा, मुक्ति और जीवन मुक्ति। वैसी दुनिया में कहा मुक्ति अन्य आत्माओं को मिलती है, परमधाम निवासी बन जाएंगी, तो कुछ भी नहीं, ना सुख है, ना दुख है, ना शांति है, कुछ नहीं, सिर्फ शांति का अनुभव है। हमें मुक्ति का अनुभव भी करना है। मुक्ति माना सब तरफ के किनारों से मुक्त होने का अनुभव, डिटैचमेंट, मुक्ति, डिटैचमेंट। हाँ, हम घर बार छोड़ करके जाने वाले सन्यासी नहीं है, इसीलिए ये जो जो जगह से हमारी तार जुटी हुई है, डिटैचमेंट का अभ्यास मुझे बढ़ाना है। हाँ, देखो साकार बाबा भी डिटैच, बच्चों से डिटैच होता गया, शिव बाबा ने बच्चों को डिटैच किया। किसी को सपने में भी कल्पना होगी क्या कि ब्रह्मा बाबा कभी शरीर छोड़ेगा? बाबा ने डिटैच किया, ये भी शरीर छोड़ सकता है, इसीलिए बच्चों को इसको याद नहीं करना है, उसको याद करना है। डिटैच करा है ना हमको, मुक्ति। और दूसरा है जीवन मुक्ति, माना कार्य कारोबार करते हुए, संबंधों के बीच रहते हुए मैं अपने को फ्री बर्ड अनुभव करूं, अर्थात सबके बीच होते हुए भी मैं जब चाहूं तब स्वयं को डिटैच कर सकूं, मुक्ति। और तभी तो हम फरिश्ता बन करके उड़ सकेंगे ना, नहीं तो नीचे की बातें हमें पकड़ के रखेगी। और यही ब्राह्मण जीवन का पुरुषार्थ है। जनरली हम ब्राह्मण जीवन माना क्या समझते हैं? मुरली सुनना, योग तपस्या करना, अपने जीवन में दिव्य गुणों को भरते जाना और ईश्वरीय सेवा से अपना जमा का खाता, पुण्य का खाता बनाते जाना, ये चार विषय हम ब्राह्मण जीवन का आधार समझकर चल रहे हैं। लेकिन आफ्टर ऑल ये चारों ही चीज हम क्यों करना चाहते हैं? इन सब चीजों से हमें कहां पहुंचना है? रोज हम ज्ञान स्नान कर रहे हैं, रोज योग द्वारा हम हमारे विकर्मों को भस्म कर रहे हैं, दिव्य गुणों को धारण करके अपने देवताई जीवन को फिर से भर रहे हैं या जागृत कर रहे हैं। और आने वाले समय के लिए ईश्वरीय सेवा द्वारा श्रेष्ठ कर्म जमा करके अपने प्रारब्ध को बना रही है। क्यों कर रहे हैं ये सब? आफ्टर ऑल हमारा अंतिम स्वरूप बाप समान फरिश्ता स्थिति को, संपन्न स्थिति को, संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए इन चारों विषयों का आधार लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम संगम युगी ब्राह्मण जीवन को अगर देखें तो 1936 से ये यात्रा शुरू हुई। साकार बाबा ने अपनी फरिश्ता स्थिति को प्राप्त किया तब तक लगभग लगभग 350 जितने सेवा केंद्र थे। जब साकार बाबा ने शरीर छोड़ा वो जर्नी शुरू करके बाबा की फिजिकल जर्नी पूरी हुई और उसके बाद 36 से 69 कितने साल हुए, 36 से 69 कितने साल हुए, 33 इयर्स। तपस्या और सेवा को लेकर 350 तक सेवा केंद्र ऑलमोस्ट थे और अभी वो यात्रा आगे बढ़ते बढ़ते 2017 में सारी विश्व में मुश्किल कोई 2-4-5 देश 10 देश रहे होंगे जहां अभी तक ब्राह्मणों के पांव नहीं पड़े हैं। इतनी लाखों आत्माएं अभी बाबा का बच्चा बन करके चल रही है, लाखों आत्माएं। अब देखो हर साल सीजन में ही आजकल 20-25 हजार का 30 हजार का ग्रुप बन रहा है, लाख 1.5 लाख तो एक सीजन में आ रहे हैं और हर एक सेंटर को संख्या कितनी मिलती है, बहुत कम मिल रही है अभी तो बाबा को मिलने के लिए। तो इतनी कम परसेंटेज में 1-1.25 लाख हो जाते हैं तो टोटल बाबा के बच्चे कितने होंगे? नहीं, अभी 33 करोड़ पहुंचे नहीं है, अभी हम लाखों की संख्या में जो बाबा के बच्चे हैं। लेकिन आजकल मीडिया और ये टीवी और चैनल्स और इनके द्वारा जो बाबा का संदेश प्राप्त कर रहे हैं, संदेश प्राप्त करने वाली तो कितनी करोड़ों आत्माएं हो गई होंगी और जो थोड़ी बहुत अंजलि भी ले सकेंगे वो त्रेता के अंत में आएंगे, वो 33 करोड़ वाली आत्माएं। तो समय अभी कम है और 33 करोड़ आत्माओं तक अगर हमें पहुंचना है तो फरिश्ते स्थिति की सेवा के द्वारा ही पहुंच सकते। इतने 1936 से लेकर 2017 में अभी कितने तैयार हुए, सिर्फ लाखों की तादाद में। ये तो एक टेंटेटिव आंकड़ा डाला है, इसमें टेंटेटिव डाला है, लाखों की तादाद में हम कह सकते हैं। हमें तैयार कितनों को करना है, तो इतने सबको हम कम समय में कैसे तैयार कर पाएंगे? जब तक फरिश्ता स्थिति द्वारा आत्माओं को संदेश देने का काम, अनुभूति कराने का काम हम ब्राह्मण बच्चे नहीं करेंगे। इसीलिए समय की पुकार क्या कहती है कि अब समय है हम ब्राह्मण अपने को लिफ्ट करें और अपनी फरिश्ता स्थिति का आवाहन करके बाबा के कार्य को पूरा करने का अब संकल्प दृढ़ करें। अब ये हम ही कर सकते हैं, हम ब्राह्मण ही ये कर सकते हैं। क्यों? हमने भगवान को ढूंढा, भगवान हमें नहीं मिला। हाँ, कोई है जो कहे कि मैंने शिव बाबा को ढूंढा तो हाथ उठाओ। भक्ति तो सबने बहुत की होगी, है? बहुत की होगी, एक जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतर की भक्ति तो हमारी जमा है। हमने भगवान को ढूंढा वो नहीं मिला, हमें मिला कब? जब वो आया और उसने हमको ढूंढा, उसने हमको ढूंढा है। देखो हमको ढूंढने के लिए उसने कितनी मेहनत की है। बाबा ने ब्रह्मा बाबा को सुहा किया कराया, सारी माल मिल्कियत सही सुहा कराया, फिर इतने सारे अन्य लोगों को तन मन धन सुहा कराया, इतने सेंटर्स खुलवाए, इतने अनेक घर गृहस्थ में रहने वालों का तन मन धन सुहा कराया, तब जाकर बाबा का संदेश हम तक पहुंचा। हमारे शहर में सेंटर खुला तब हमें संदेश मिला ना, उसके लिए कितनी बड़ी प्रक्रिया हुई होगी। तब बाबा ने मुझे ढूंढा और बाबा का संदेश मुझ तक पहुंचा। तो भगवान ने हमको ढूंढा, तब उसकी नजर पड़ी, तब मेरी बुद्धि खुली, तब तक नहीं खुली थी। कहते हैं ना, ताला खोलने की चाबी तो सिर्फ मेरे ही पास है। तो उसने ढूंढा, तो हम वो पद्मा पदम सौभाग्यशाली थोड़ी सी आत्माओं में से हैं, जिसको भगवान ने भी अपना भंडार खुले हाथ से दे दिया है और हम सबको खुलकर दे दिया है कि अभी आप इसके मालिक हो, जितना बांट सको उतना इस भाग्य को बांटो, दूसरों को दो और दूसरों का भला करो। अब हम समझते सारा दिन नौकरी करते धंधा करते, माताएं समझती हम घर सारा दिन कार्य कारोबार में, फ्री कब होवे? और दिन ब दिन समस्याएं तो बढ़ती जाती है, दिन ब दिन हमारा लाइफ इजी गोइंग नहीं हो रहा है, दिन ब दिन लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तन की समस्याएं पहले नहीं थे, वो सारे रोग आ रहे हैं। डॉक्टर्स भी कहते हमने रोग का नाम कभी सुना ही नहीं, ऐसे रोग आ रहे हैं। मन की ऐसी ऐसी बीमारियां बिना कारण के, लोगों को डिप्रेशन आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन आ रहे हैं। जो जितना ज्यादा इंटेलिजेंट उतना ज्यादा सेंसिटिव, इसीलिए जितनी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बढ़ रही है उतनी सेंसिटिविटी बढ़ रही है। और इसीलिए देखो संबंधों में डाइवोर्स, संबंधों में खिंचाव, सुसाइड, ये जो कुछ भी हो रहा है इसका कारण मन की शक्ति कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही है लाइफ में। धन अभी आजकल रोज ये जीएसटी की चर्चा चल रही है, आप सबको भी मालूम होगा, हाँ जीएसटी लागू हो रहा है, कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है। इवन गवर्नमेंट के लोग कह रहे हैं, वही डिपार्टमेंट के लोग, अभी पहले एक्साइज था वेट था, अभी वो सब निकल के जीएसटी हो रहा है। अभी अभी मैं आने से पहले परसों हम लोग एक मीटिंग में थे, अपने यज्ञ के हिसाब से जीएसटी के लिए कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ मीटिंग में हम लोग कुछ सिलेक्टेड बहने बैठी थी। अब उसमें एक एक्साइज का असिस्टेंट कमिश्नर बाबा का बच्चा भी बैठा था, वो कह रहा था 1 तारीख से जीएसटी लागू होने वाला है, लेकिन अभी तक हमारे पास इसका ना कोई प्रॉपर सॉफ्टवेयर है, अभी तक हम लोग खुद भी क्लियर नहीं है। खैर गवर्नमेंट ने नक्की किया है तो गवर्नमेंट करेगी, कराएगी सब कुछ, लेकिन ये सब चीजें लोगों को दुविधा में डाल रही है। अब ऐसा सब चेंजेस आएगा इससे क्या होगा। परसों मैं आ रही थी, उसके अगले दिन शाम को मेरे पास एक बिजनेस वाला आया, बोला मेरा गारमेंट्स का बहन जी बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं सोचता हूँ ये बिजनेस को बंद ही कर दूँ 1 तारीख से। तो मैंने कहा भाई क्यों? बोला मेरा आधा माल तो एक्साइज और वेट कुछ भी भरे बिना का माल है, 2 नंबर का माल है। अब अगर मैं जीएसटी में माइग्रेट करता हूँ तो मुझे पूरा स्टॉक दिखाना पड़ेगा, आगे स्टॉक दिखाया नहीं है, अब ये सब मैनेज कैसे करूँ मैं? लोग इन सब चीजों से इतना घबराए हुए हैं। धन की समस्याएं, ये नोटबंदी में कितने लोगों की पुरानी नोट कुछ काम की नहीं रही, जो नहीं ट्रांसफर कर पाए। तो प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, लाइफ कॉम्प्लिकेटेड बनती जा रही है। ऐसे समय पर हम बाबा के बच्चों को बाबा ने ये भाग्य का भंडार खोल के दिया है, और इसीलिए बाबा कह रहा है कि इन सब समस्याओं के बीच थोड़ा थोड़ा समय निकालकर हम अपनी फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करें और आत्माओं को इंटरनल सकाश शक्ति मदद हिम्मत दे करके उन्हें तैयार करें। जब आत्माएं तैयार होंगी, कम से कम हमको 33 करोड़ तो चाहिए ना त्रेता के अंत तक की। जब वो हमारे से कुछ प्राप्ति का अनुभव करेगी तब वो जुटेगी, और जुटेगी तो हम बाबा के साथ उसको जोड़ेंगे। ये अपनी जर्निंग के लिए यहाँ कुछ पॉइंट्स दी है कि भक्त भगवान के ऊपर बलिहार जाने की मेहनत करते हैं, और यहाँ स्वयं भगवान हम बच्चों पर बलिहार। कोई कम भाग्य है क्या ये? चलो कितनी भी समस्याएं हम लोगों के पास भी है, लेकिन उनके पास भगवान की छत्र छाया नहीं है, वो तो ढूंढ रहे हैं और हम छत्र छाया में बैठे हैं, ईश्वरीय गोद में परमात्मा पालना में पल रहे हैं। तो भगत तो अपने आप को बलिहार जाने के लिए सब कुछ करने की मेहनत करते तैयार हो जाते, और हमारे पीछे स्वयं भगवान बलिहार जाता, दौड़ दौड़ कर ऊपर से नीचे आता है ना। शरीर नहीं भी चल रहा है, रथ नहीं भी चल रहा है, तो भी धक्का मार मार करके रथ को किसके लिए कर रहे हैं ये सब बाबा? बच्चों के लिए। भगत भगवान के गीत गाते महिमा के, और भगवान हम बच्चों के गीत गाता। वो कहता है कि बच्चे आपके बिना मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए अभी जल्दी तैयार हो जाओ। हाँ, इतने 36 में मैं आया, 2017 इतने वर्षों से आपकी तैयार होने का इंतजार कर रहा हूँ, बस आपकी राह में बैठा हूँ। भाई कब तक बैठूंगा? हाँ, इसीलिए अब स्पीड करो, तैयार हो जाओ, आप सबकी मुझे जरूरत है। एक ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने से इतनी स्पीड हो गई है सेवा में। अगर इतनी सब आत्माएं रोज फरिश्ता बनकर के आत्माओं को जाकर संदेश पहुंचाना शुरू करेंगे, भले हम सारा दिन अपने कारोबार में रहे, सुबह और शाम दो टाइम भी फिक्स करके अपनी वो स्थिति की अनुभूति और अभ्यास को बढ़ाएंगे, तो भी कितनी आत्माओं तक हम पहुंच पाएंगे। हम सिक्की लदे हैं क्योंकि बाबा ने हमें ढूंढा और अपना बनाया। हम विश्व के लिए पूर्वज है, पूजनीय है, आधार मुहूर्त है, उधार मुहूर्त है, और इसीलिए अब आत्माओं का आवाहन सुन करके हमारी नींद उड़ जाए। एक अव्यक्त मुरली में बाप दादा ने बहुत अच्छी बात सुनाई है कि बच्चे आत्माएं पुकार रही है, आप बच्चों को उनकी पुकार सुनाई नहीं देती है? क्यों नहीं सुनाई देती है? हम देवभाव में हैं, अपने में ही मुंझे हुए हैं। अपनी देवभाव से बाहर निकले तो दूसरों की आवाज और पुकार सुनाई दे। तो सार रूप में हम ये कहें कि हमें पुरुषार्थ क्या करना है, हमें भविष्य को वर्तमान में खींच कर लाना है। अभी वर्तमान वैसे हमारा क्या है, ब्राह्मण जीवन, सो भविष्य क्या होना है, फरिश्ता सो देता। आने वाली दुनिया में हम सत्युगी देवता होंगे, लेकिन उस स्वरूप का साक्षात्कार लोगों को फरिश्ते स्थिति में कराएंगे, देवता स्थिति में तो साक्षात्कार नहीं होगा ना। जो साक्षात्कार कराने की बात है वो देवत्व वाली, हरि को अपनी भावना अनुसार अपने देवी देवता का साक्षात्कार होना है भावना अनुसार, लेकिन माध्यम कौन इसका, किसके द्वारा होगा? हम बच्चों के द्वारा। तो जो हमारा आने वाला भविष्य है फरिश्ता स्थिति, उसे हमें वर्तमान में अट्रैक्ट करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा कहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा कहता है कि जिस चीज को आप बार बार विजुअलाइज करेंगे, बार बार अपने में वो चीज को देखेंगे, तो धीरे धीरे वो चीज, देखो इसीलिए बाबा ने नॉलेज क्या दिया, टोटल बाबा का पूरा देवता बनाने का प्रोसेस क्या है, स्मृति। स्मृति तो जगाई ना बाबा ने हमारी, बाबा ने कहा कल देवता थे, फिर कल देवता बनना है। लेकिन देवताई स्थिति और ब्राह्मण स्थिति के बीच की जो परफेक्ट स्टेज है वो क्या है? तो अब हमें वो फरिश्ता स्थिति को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है। मेरी और फरिश्ता स्थिति के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को कम करना है। हो सकता है आप में से कईयों ने ये बात सुनी हो कि ब्रह्मा बाबा का जो लास्ट पुरुषार्थ था, एकदम लास्ट, वो यही था, बाबा संदेशी को वतन में भेजता था और संदेशी को कहता था नीचे वाले बाबा और ऊपर वाले बाबा में कितना डिफरेंस है तुम देख के आओ। फिर संदेशी आकर कहती थी कि ऊपर वाले बाबा की लाइट बहुत ज्यादा थी, नीचे वाले बाबा की लाइट अभी इतनी नहीं। तो बाबा ने लास्ट पुरुषार्थ क्या किया, अपने उस फरिश्ते स्वरूप को अट्रैक्ट किया, बार बार वो याद किया कि मुझे वो पूरा फुल लाइट वाला बनना है। आत्मा की ज्योति जो बुझाई हुई है वो फुल बैटरी चार्ज वाला बनना है, और इसीलिए चेक किया कि अभी ये बैटरी में कितना प्रकाश है और वो बैटरी में, तो मुझे वो लाइट को भरते जाना है। और बाबा से वो लाइट भरी, जमा बाबा ने भी वो लाइट कहां से भरी, शिव बाबा से। लेकिन वो लास्ट विजन था कि मुझे फरिश्ता बनना है, ऐसा अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा बनना है, हम हरि को अपना संपूर्ण स्थिति को याद करना है। मुझे मिस्टर एक्स हूं, अब मुझे संपूर्ण मिस्टर एक्स बनना है। वो लाइट मुझे अपने अंदर अभी फुल करनी है। तो प्रोसेस क्या हुई, हमारी मेहनत और प्रोसेस क्या हुई, जो नियर का फ्यूचर है उसको हम प्रेजेंट में ले आए। बार बार अभी थोड़े समय के लिए आएगा फिर चला जाएगा, फिर थोड़े समय के लिए आएगा फिर चला जाएगा, ऐसे करते करते उसका ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। समझा इस बात को? परिष्ट स्थिति की अनुभूति अभी थोड़ा टाइम होगी लेकिन वो अनुभूति बढ़ती जाएगी। जितनी अनुभूति समय बढ़ता जाएगा उतनी हमारी स्थिति नजदीक आती है। यही उसकी विधि है, इसकी और कोई विधि अवेलेबल है ही नहीं। इसी बात को थोड़ा और स्पष्ट किया है, मुझे मेरा भविष्य पूरी तरह स्पष्ट हो। क्या हम श्योर हैं कि हम आने वाले समय में संपन्न हो जाएंगे? किस किस को निश्चय है, जरा हाथ उठाओ। बाकी सोच रहे हैं, थैंक यू, कि पता नहीं अभी के पुरुषार्थ प्रमाण होंगे या नहीं होंगे, ऐसा सोच रहे हैं। हाँ, ऐसा सोच, हम अपनी ड्रामा अनुसार हमने कल पहले जिस लेवल को प्राप्त किया था वो लेवल तक तो हम पहुंचेंगे ही ना, वो परफेक्टनेस तक तो पहुंचेंगे ना कि नहीं? कम से कम भले नंबरवार ही सही, लेकिन मैं अभी अपनी परफेक्टनेस को अचेक तो करूं, उसको डिफाइन तो करूं, या ऐसे ही चले जाना है? अभी जिस स्थिति में है वही स्थिति में परमधाम जाना है क्या? जा सकेंगे, जा सकेंगे, नहीं जा सकेंगे ना? अगर वो अधूरा रह गया, जो भी बाकी रह गया, तो वो कर्म भोगना से हिसाब किताब तो चुकतू करके जाना पड़ेगा ना। तो ये स्थिति में तो हम नहीं जा सकेंगे ना। इसीलिए हमें अपनी मेहनत को अभी बढ़ाना है। अलबेलेपन का भी समय चला गया, हो रहा है, चल रहा है, कर रहे हैं, नहीं, अभी पहले अपने निश्चय को चेक करो। एम आई श्योर? सचमुच हम ही फरिश्ता और हम ही देवता बनने वाले हैं, क्या मैं श्योर हूं? पहले अपने आप को ये श्योरिटी दिलाओ, ये पक्का कराओ। देवी देवताएं भी बहुत है, कोई देवताओं की रोज पूजा होती है, कोई की साल में एक बार पूजा होती है। एक बार बहुत साल पहले, मैं बरसों पहले एक थोड़े समय के लिए कटक आई थी, कुछ दिन के लिए, और जब मैं कटक आई तो ये कार्तिकेय की उसी दिन, आपके पास वो कार्तिकेय का बहुत पूजा चलती है ना, हाँ, साल में एक बार होता है, वो विसर्जन वाला दिन था जब मैं उधर थी, मुझे आज भी पक्का याद है। साल में एक बार, कितनी उसकी धूमधाम से पूजा भी होती है और बड़ी बड़ी यात्राएं निकलती है, सारे रोड ब्लॉक है, यादगार तो है ना, हमारे में से किसी का तो यादगार होगा ना साल में एक बार वाली पूजा। तो कोई देवी कोई देवता कंप्लीट 100% तैयार होंगे, कोई 80% हुए होंगे, लेकिन उनके भक्त भी 80% वाले ही होंगे ना। फिर उनके भक्त द्वापर युग वाले नहीं होंगे, बीच द्वापर वाले होंगे, द्वापर अंत वाले होंगे, कलयुग शुरुआत वाले होंगे, नंबरवार तो होंगे ना। लेकिन हम बनेंगे क्या, बनेंगे क्या? सत्ययुग में आने वाले देवता बनेंगे, ये तो पक्की बात है ना। 9 लाख वाली पहली एंट्री में हमारा पार्ट होगा, ये पक्की बात है। ये उसमें भी थोड़ी दुविधा है जिसको थोड़ी दुविधा है वो जरा हाथ उठाओ। नहीं, तो ये अलग अलग देवी और देवताएं हमारा यादगार है और अपनी वो फीलिंग को बढ़ाना है। मैं बहुत साल पहले की बात कर रही हूं जब मैंने टीचर्स ट्रेनिंग की थी, हंसी की बात सुना रही हूं। तो उस समय हमको ही सिखाया गया कि देखो अपने हाथ, अपने पांव, अपने कपड़े हमेशा बहुत नीट क्लीन और अपडेटेड होने चाहिए। क्यों? कभी भी मेरे भगत को मेरी जरूरत पड़ी और उसने मेरा आवाहन किया तो मेरी कैसी मूर्ति उसको दिखाई देगी? अगर उस समय मेरे पांव गंदे गंदे हैं, हाथ गंदे हैं, ये देवी का दर्शन उसको होगा तो उसको उसके विचारे की तो भावना ही टूट जाएगी। तो अपनी वो प्यूरिफाइड स्टेज में हमारा रहना ये अभी बहुत जरूरी है। कभी भी हमारे भगत हमारा आवाहन करे और हमारा साक्षात्कार बाबा उनको कराए तो हमारा क्या स्वरूप दिखाई दे? एनी टाइम क्या स्वरूप दिखाई दे जिससे उनकी भावना, मन भी और तन भी कंप्लीट प्योर। नहीं तो विचारों की, दर्शन की इच्छा अधूरी रह जाएगी, उनकी आशाओं को कौन पूरा करे? इसीलिए हमें हमारे भविष्य को स्पष्ट करना बहुत जरूरी। हम ही थे, मैं ही था, मैं ही देवी थी। भविष्य के बारे में कोई संशय, अविश्वास, अनिर्णायकता नहीं हो। अगर है तो अपनी बड़ी बहनों के साथ बैठो और उसको खत्म कर दो, क्लियर करके उसको फिनिश करो। बाबा के पास जाकर बैठो, बाबा से रूढ़िहान करो, बाबा से गाइडेंस लो, टचिंग लो और उसको खत्म करो। ये वो टाइम है जब अगर मैं प्लेन बुद्धि होकर के बैठती हूँ तो बाबा से क्लियर कट टचिंग्स हमको मिल सकती है, क्लियर टचिंग्स। अरे यहां तक वो टचिंग देता है, एक लेटर लिख रही थी कल, मैं सोच रही थी कि परफेक्ट शब्द कौन सा लिखूं और क्या टचिंग मिली। इतना परफेक्ट शब्द टच किया बाबा ने तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि ये शब्द मेरी स्मृति में आया कैसे। और ऐसे वंडरफुल अनुभव हम सबको अभी करते जाना है। ये अनुभूति हमें बाबा से क्लोज कराएगी जिसकी अभी आवश्यकता है। जैसे भगत अपने को भगवान से दूर समझते से मैं बच्चा और बाबा बाप नहीं, अभी तो एब्सॉर्ब होके समा जाने का टाइम है। और वो अनुभव तब होगा जब अपनी बाबा के साथ के रिलेशनशिप बहुत क्लियर बनेगी, कोई संशय नहीं, कोई बात में इनडिसिसिव नहीं, कोई बात में क्वेश्चन नहीं। अगर है तो उसको लंबा चलाओ नहीं, उसको खत्म करो। चाहे बाबा के पास बैठो, चाहे निमित्त से बैठो, चाहे उसका मुरली से गाइडेंस लो, लेकिन कोई संशय को लंबा टाइम बुद्धि में टिकने नहीं देना है। स्पष्ट हम ही थे, हमें ही जाकर करना है। मुझे ये स्थिति में टिकना है, ये अनुभव मुझे बार बार अभी बढ़ाना है। अभी एक क्वेश्चन अपने से करो, चेकिंग की पॉइंट चाहिए, वेयर आई स्टैंड। इतना सब सुनने के बाद चेक करो वेर आई स्टैंड, क्या मैं अपने भविष्य से पूरी तरह प्रेरित हूँ। लिखो अपनी डायरी में हाँ या ना, क्या मैं अपने भविष्य से पूरी तरह प्रेरित हूँ। क्या प्रेरित हूँ? बस कल जाकर मुझे ऐसा फरिश्ता सो देवता बनना है। प्रेरित हूँ हाँ ना, आधा प्रेरित हूँ, कम प्रेरित हूँ, या अभी वो प्रेरणा नहीं आ रही है। जो आपका जवाब वो लिखो। क्या सेकंड क्वेश्चन है, क्या उस स्थिति की प्राप्ति के लिए मैं उत्सुक हूँ। मुझे क्यूरियोसिटी है कि मेरे पास टाइम नहीं है। क्यूरियोसिटी है कि मुझे करना है। अपनी उत्सुकता की परसेंटेज चेक करो कि प्रॉब्लम्स के बीच वो उत्सुकता ठंडी हो जाती है। होगा उतना करेंगे, अभी तो कौन बदल गया है, कोई ऐसा दिखता नहीं है, ये होपलेसनेस की बात है, निराशात्मक बात है। कोई बने ना बने, ब्रह्मा बाबा ने किसी का इंतजार किया? किया किसी का इंतजार? नहीं किया। उन्होंने अपने आप को चेक किया। तो मुझे अपने को चेक करना है, क्या मैं उसके लिए फुल प्रेरित हूँ, उत्सुक हूँ? क्या सचमुच मुझे फरिश्ता बनना ही है? तो क्या करो, आज से धुन लगा दो। क्या धुन लग जाए? मुझे फरिश्ता बनना ही है। अब मेरा बोलना, मेरा चलना, मेरा उठना, मेरा बैठना फरिश्ते समान। और ये मेहनत करने से होगा। अभी देखो, कल हम लोग टोली ले रहे थे, सब थोड़े थोड़े जितनों को उठाया, आप सबने वो डिसिप्लिन को मेंटेन किया और डिसिप्लिन से उठे तो वायुमंडल कैसा रहा। और जैसे ही टोली का नाम होता, पूरा का पूरा क्लास उठ करके धक्का लगाता तो वो वायुमंडल कैसा होता। ये फर्क है। फरिश्ता स्थिति जिसमें हम धैर्यवत है, हमारा बोलना भी पीसफुल। इसका मतलब ऐसे नहीं कि मैं ऐसा धीरे धीरे चल रही हूं कि लोग मेरे को देखकर थक जाए। स्फूर्ति हो लेकिन हलचल नहीं हो, चंचलता नहीं हो, आवेश और आक्रोश और जोश नहीं हो। समझा इस बात को? स्फूर्ति से चलना है। साकार बाबा मम्मा को देखो, कहते मम्मा बाबा चलते थे, लोग पहुंचते भी नहीं थे, इतना फास्ट चलते थे। तेजी थी, फुर्ती थी, लेकिन चंचलता नहीं थी, आवेश नहीं था। पर्सनालिटी को क्रिएट करना पड़ेगा। ये इस सेशन का होमवर्क है। जोश नहीं, धैर्यवत व्यक्तित्व है, स्टेबल पर्सनालिटी है। ये मेहनत अपने आप के पीछे करनी है। हमारा बोलना, बाबा कहता था जोर जोर से हंसना, ये रॉयल्टी नहीं है। फरिश्ता स्थिति बनाना माना इन सब प्रकार की, उठना बैठना, खाना पीना सोना, ये रॉयल्टी फिजिकली भी हम अपने अंदर भरते हैं। मेंटल स्टेज को तो बनाना है, लेकिन उसको बनाने में हेल्प हमारी फिजिकल स्टेज करेगी। उठना बैठना बोलना सोना हंसना बहलना। अभी एक मुरली में बाबा ने कहा कि एरोप्लेन में घूमो, मोटर में घूमो, इसकी मना नहीं है, लेकिन हम हमारी डिविनिटी और रॉयल्टी को नहीं छोड़। और अगर ये धुन लग गई कि मुझे फरिश्ता बनना है तो उसको रोक कौन सकता है? अगर धुन लग गई मुझे बनना है तो उसको बंद कौन कर सकता है? माया तो बाबा ने वैसे ही कहा है कि माया तो सिर्फ खुखार पे आती है, दिखती है इतनी खुखार नहीं। अगर आप शेर के ऊपर सवा शेर बन जाओ, शक्तिशाली बन जाओ, तो माया कुछ आएगी लेकिन वो कुछ कर नहीं सकेगी, बिगाड़ नहीं कर नहीं सकेगी, माना हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी, हमें हिला नहीं सकती। ये अवस्था को हमें मेहनत से बनाना होगा। ब्राह्मण माना ही जो चाहे वह कर सके, फ्री बर्ड, निर्बंधन। अब आप कहेंगे हम घर गृहस्थी में है, घर गृहस्थी में है तो भी कई बार प्रैक्टिस होती है, कई बार अपनी खुद की अट्रैक्शन होती है, हमें अच्छा लगता है इसीलिए हम छोड़ते नहीं है। एडजस्ट करना चाहे तो एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि मेरे बिना ये दुनिया खत्म हो जाएगी और मेरे बिना ये दुनिया बंद हो जाएगी, छोड़ते नहीं। तो अपनी स्थिति ऐसी हो, अपनी ड्यूटी को किया भी लेकिन अंदर से कोई आकर्षण मुझे आकर्षित नहीं कर। कई बार कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें बहुत मान शान मिलते हैं, नाम मिलते हैं, तो कई बार ऐसी नाम मान और शान के पीछे हम रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। ये सब चीजें एक्चुअल बंधन है। अगर इंटरनल आत्मा निर्बंधन बनती है तो बाबा की मदद हमें कार्य कराएंगे। सौंप तो बाबा को, करण करावनहार वो है, हम नहीं है। करने वाली मैं नहीं हूं, मेरे द्वारा कराने वाला वो है। मैं एक अच्छी इंस्ट्रूमेंट बन जाऊं बस, फिर बाबा उसको यूज करेगा। इसीलिए आओ, हमने अब तक जो किया भूल जाओ, पास्ट इज पास्ट, खत्म करो उसको। जितने भी बोझ है वो बाबा को ट्रांसफर करो, संभालो। आप जैसे कहेंगे मैं अपने हाथ पांव चलाऊंगा, बाकी संभालो आप। संभालू मैं नहीं, संभालो। आप जैसे चलाओगे मैं चलने के लिए तैयार। आप नए सिर से एक नई विधि से अपने आप को चलाना शुरू करो। एवरी स्टेप पर बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है, वो जैसे कहे वो जैसे चाहे। घर से बाहर निकलो, बाबा के पास एक सेकंड जाओ, बाबा ये कारोबार है, क्या करना है मुझे, कैसे करना है, गाइड मी, चलो साथ। वापिस आए, बाबा को समाचार दो। हरेक के घर में बाबा के लिए एक जगह तो आपने बनाई होगी ना। हरेक ब्राह्मण ने छोटी मोटी, अरे कहीं नहीं, अपने बेडरूम में भी कहीं बाबा को रखा होगा ना। बाकायदे बाबा से मिलके जाओ, आकर के रिपोर्ट। कुछ काम करना पड़ेगा प्रैक्टिकली, तब वो अनुभूति बढ़ेगी। भविष्य को वर्तमान में ले आए और भूतकाल को, क्योंकि जो डिस्टर्ब करने वाली बात है वो पास्ट की बात है। जो कुछ हुआ वो ड्रामा में था और हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, करने जैसा था नहीं करने जैसा था, बट हो गया सो फिनिश। अब आज से मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। हुई फरिश्ता, बनना ही है फरिश्ता। जितना अधिक समय हो सके, जैसे बाबा ने कहता था अपने पांच स्वरूप का आवाहन करो, बीच में बाबा ने कहा था दिन में 7 बार 8 बार अपने वो पांच स्वरूप को याद करो, ये क्या था? यही सो देवता वाली, सो फरिश्ता वाली स्मृति का आवाहन और फीलिंग थी। तो फीलिंग को अभ्यास से बढ़ाते जाना है, मेरा इंटेंशन, मेरा एटीट्यूड, मेरा अप्रोच। अब टोटली फोकस हो जाए कि मुझे अपने सारे व्यवहार के कारोबार को संभालते हुए अपनी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को अब पढ़ाना है, उसको नजदीक लाना है। चाय के भरे हुए कप में ताजी चाय नहीं भर सकते। ताजी चाय को भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? खाली करनी पड़ेगी ना, तभी कटोरे में नई चाय गर्म जाएगी, ताजी जाएगी। ऐसे अब अगर मुझे नए फरिश्ते स्थिति की, ऊंची स्थिति की, ताजी स्थिति की अनुभूति करनी है, शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति करनी है, तो पुराने शूद्रपन वाले जीवन को अब हमें छोड़ना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। भले उसमें कभी कभी बहुत मजा आता है, हमको लगता है, लेकिन वो सारे अल्पकाल के आकर्षणों को अब मुझे छोड़ना है, त्याग करना है। और बेहद के बाप से जो प्राप्तियां मिली है उसको अपने जीवन में समाते जाना है। ये फीलिंग पाना था सुपर, ये हमारी कंप्लीटनेस की तरफ हमको जल्दी से जल्दी ले जाएगी। ऑप्शन बाकी आज के दिनचर्या के प्रमाण। हम सभी चारों धाम की यात्रा भी करेंगे और चार से साढ़े चार में सभी चार धाम की यात्रा करेंगे। साढ़े चार से पांच यहां बैठकर पत्र लिखेंगे बाबा को, दोस्त के रूप में, लाइट वे में। और फिर साढ़े पांच से साढ़े छह, आज साढ़े पांच से सवा छह कमलेश दीदी का क्लास रहेगा, और उसके बाद फिर हम यहां से जाएंगे ओम शांति भवन में। सॉरी, मैं शायद टाइम गलत अनाउंस किया है। साढ़े चार से पांच आप चार धाम की यात्रा करेंगे, पांच से साढ़े पांच ऐसा नहीं, पांच से साढ़े पांच यहाँ बाबा को पत्र लिखेंगे, ठीक है। और फिर बाबा के कमरे में बहुत बड़ा लेटर बॉक्स है, आते जाते वो लेटर बॉक्स में अपना लेटर डाल दे, ठीक है। अभी हम बाबा के पास बैठते हैं, अपने वही फरिश्ते स्वरूप का आवाहन करते हैं। क्या याद करना है? बनना है नहीं, मैं हूं ही फरिश्ता। क्या याद करना है? मैं हूं ही फरिश्ता। अब मुझे अपने फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में ज्यादा से ज्यादा समय स्थित होना है।
देख लो अनोखा ये संसार, निर्विकार ये परम धाम है, प्रकाश पारावार। फरिश्तों का देख लो अनोखा ये संसार, निर्विकार ये परम धाम है, प्रकाश पारावार। फरिश्तों का देख लो।